अध्याय खामोशियां जो चीखती हैं। कमरा शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा। पीले बल्ब की रोशनी में दीवार की परछाइयां लहराने लगी थीं, मानो दीवारें भी उसके भीतर के तूफान को चुपचाप महसूस कर रही हों। बाहर से कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती, लेकिन कमरे के भीतर सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे जिंदगी ने एक सांस लेनी बंद कर दी हो। शालिनी बिस्तर पर बैठी थी, उसका फोन सामने मेज पर रखा था। बार बार उसकी आंखें उस स्क्रीन पर टिक जाती और हर बार वो नाउम्मीद हो जाती। उसने एक बार फिर फोन उठाया। अखिल? उसकी होठों ने सिर्फ नाम पुकारा, लेकिन कॉल लगाने की हिम्मत फिर भी थोड़ी देर बाद आई। उसने स्क्रीन पर नाम देखा, अखिल कॉलिंग। नहीं, वो बस उसकी कल्पना थी। हकीकत में स्क्रीन अब भी वैसे ही खामोश थी जैसे खुद अखिल की मौजूदगी। शालिनी ने कांपते हाथों से कॉल लगाया। दूसरी, तीसरी, चौथी बार। स्विच्ड ऑफ। वही जवाब, वही बेरहम आवाज जो भावनाओं को बिना किसी तमीज के काटकर रख देती है। फोन नीचे रखते हुए उसने खुद से कहा, कहाँ हो तुम अखिल, इस वक्त जब सब कुछ बिखर रहा है, जब एक आवाज, एक जवाब, एक सांस तक की जरूरत है। तुम हो ही नहीं। क्यों? उसने सिर पीछे टिकाया और छत की ओर देखा। मैं समझ सकती हूं कि तुम भागना चाहते हो, लेकिन कम से कम मुझे बताकर तो जाते। क्या मैं भी अब तुम्हारी परेशानियों में शामिल नहीं रही? उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे सब लोग हजार तरह से देख सकते हैं अखिल, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की जिम्मेदारी, पर सिर्फ तुमने मुझे वो देखा जो मैं सच में थी। और अब जब मैं वही बनने की कोशिश कर रही हूं, तुम क्यों नहीं हो? उसने रजाई अपने पैरों के इर्द गिर्द लपेट ली, लेकिन ठंड जैसे उसके भीतर तक उतर चुकी थी। तुम सोचते होगे कि मैं मजबूत हूं, शायद इसलिए कुछ नहीं कहा तुमने, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते थे कि मजबूत लोग भी कभी कभी सिर्फ एक बांह चाहते हैं, कोई जो उन्हें बस थाम ले बिना कुछ कहे। उसने फोन फिर उठाया, इस बार कॉल लॉग्स को बस घूरते हुए। स्क्रीन पर वही तीन कॉल्स चमक रहे थे, नो आंसर लिखा हुआ ठंडा बेरंग। तुम्हारा फोन बंद है, या शायद तुमने जानबूझकर बंद किया है। क्या मैं अब भी उस हिस्से में हूं जहां तुम किसी को आने देना चाहते हो? आंखों में नमी आने लगी थी, वो नमी जो शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे दिल को डुबो देती है। आंटी पूछ रही थी कि मैं तुमसे रिश्ता तो नहीं तोड़ूंगी, लेकिन वो नहीं जानती कि रिश्ता तोड़ने के लिए दो लोगों का दूर जाना जरूरी होता है। मैं तो अब भी यही हूं अखिल, उसी जगह जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था, अपने विश्वास के सबसे करीब। वो उठी और खिड़की तक गई, पर्दे हटाकर बाहर झांका। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी निगाहें उस एक शक्ल को ढूंढ रही थीं जो शायद बहुत दूर किसी परछाई में खो गई थी। तुमने मुझसे कहा था एक बार कि तुम जब तक जिंदा हो मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, क्या ये वादा इतना आसान था तोड़ने के लिए? उसने सिर झटक दिया जैसे उस बात को हवा में उड़ा देना चाहती हो, लेकिन दिल कहाँ इतनी आसानी से मानता है। तभी फोन की घंटी बजी। उसने चौंक कर देखा, पापा कॉलिंग। एक पल के लिए उसका हाथ कांप गया, दिल जैसे डूब गया हो। फोन उठाते ही उसकी आवाज में एक बनावटी ठहराव था, वो शांत थी या शायद शांत दिखने की कोशिश कर रही थी। फोन कटते ही उसने वहीं बैठते हुए एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन आंखों में बहुत कुछ उभर आया था। पापा को भी खबर लग गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। उन्होंने मुझे ढाढ़स दिया बिना सवाल किए। पता नहीं ये कैसी दुनिया है जहां जिनसे हम उम्मीद नहीं रखते वही सबसे पहले संभालते हैं, और जिनसे हम सब कुछ बांटते हैं वही गायब हो जाते हैं। उसने अपना सिर घुटनों पर टिकाया, आंखें बंद कर ली। काश तुम समझ पाते अखिल कि ये सिर्फ तुम्हारा संकट नहीं है, ये हमारा संकट है। तुम छिप सकते हो सबसे, पर मुझसे क्यों? क्या अब भी तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा है? क्या तुमने मुझे इतना ही पराया समझा? कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। मैंने सब कुछ सह लिया अखिल, वो बातें जो मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा बनकर खुली, वो सवाल जो मेरी आत्मा को चीरते गए, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना था पूरे होश में, पूरे विश्वास के साथ। उसकी आंखें अब बह रही थीं खामोशी से, जैसे कोई तूफान जमीन के नीचे बहता हो। मैं जानती हूं कि तुम अकेले हो, लेकिन अखिल क्या ये जरूरी था कि मुझे भी अकेला छोड़ दो? क्या यही होता है सच्चा प्यार, एक को जलता हुआ छोड़कर दूसरा खुद छाया में छिप जाए? फोन की स्क्रीन फिर देखी, अब भी कुछ नहीं था।
कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। उसने बिस्तर के सिरहाने टिककर आंखें मूंद ली। शायद अब मुझे उम्मीद करनी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाती, क्योंकि मेरे भीतर जो प्रेम है वो तुमसे लड़ता नहीं, बस इंतजार करता है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगी, जैसे थकान ने अंततः उसे अपनी बाहों में ले लिया हो। लेकिन सोना आसान नहीं था। अंदर कहीं वो अब भी जाग रही थी, उस एक कॉल की, उस एक नाम की, उस एक संदेश की प्रतीक्षा में, अखिल की। अधूरी टेबल, अधूरे ख्याल। लाइट ग्रे पर्दों से ढका ऑफिस का केबिन एकदम शांत था। अंदर बस एसी की हल्की गूंज थी और लैपटॉप से उठती सूक्ष्म टनटन की आवाज। अखिल अपने केबिन की चेयर पर बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, जिसमें एक के बाद एक मेल्स खुल रहे थे, बंद हो रहे थे और जवाब टाइप किए जा रहे थे। कुर्सी की पीठ सीधी थी, लेकिन अखिल का शरीर थोड़ा झुका हुआ, दोनों कोहनियां टेबल पर टिकी हुई, उंगलियां कीबोर्ड पर सहजता से चल रही थी, एक मशीन की तरह जो आदेश जानती है और कार्य करती है। एक एक्सेल शीट खुली थी। Q4 प्रोजेक्शन रिव्यू इंटरनल समरी ड्राफ्ट 2.3। अखिल ने बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखी थी। सेल A7 में उसके हाथ कुछ डेटा भर चुके थे। अब वो B7 से E7 तक ऑटो सम और फॉर्मूला अपडेट कर रहा था। उसकी दाईं ओर एक कॉफी मग था, आधा भरा, जिसमें भाप नहीं थी, शायद सुबह की बची हुई, लेकिन उसे पीने की फुर्सत नहीं थी। फोन मेज पर पड़ा था, स्क्रीन बार बार चकमगा रही थी। एक बार उसमें नोटिफिकेशन उभरा, 7 मिस्ड कॉल्स, शालिनी। अखिल की निगाह उस पर पड़ी जरूर, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई मानसिक उथल पुथल, कोई विचलन नहीं। उसका चेहरा स्थिर रहा, प्रोफेशनल, सधा हुआ, तटस्थ। उसने लैपटॉप पर फिर से फोकस किया। अब वो एक मेल खोल रहा था। रीफाइनेंशियल रिपोर्ट क्रॉस वेरिफिकेशन इंटरनल ऑडिट। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। डियर मिस्टर राणा, प्लीज फाइंड द अटैच्ड रिपोर्ट ऑफ लास्ट क्वार्टर्स फाइनेंशियल डेविएशंस। आई हैव मार्क्ड एरियाज ऑफ कंसर्न एंड कंपाइल्ड प्रोबेबल रिस्पॉन्स टेम्पलेट्स बेस्ड ऑन द अर्लियर ऑडिट डिस्कशन। लेट मी नो इफ यू'ड लाइक टू सेट अप अ प्री लीगल रिव्यू मीट बिफोर द बोर्ड सेशन। सेंड बटन दबाकर उसने दो और मेल खोले, एक के साथ PDF अटैच किया, दूसरे के साथ स्लाइड प्रेजेंटेशन। धीरे धीरे ऑफिस का केबिन डॉक्यूमेंट्स और डेटा की दुनिया में बदल गया था। उसके दिमाग में हर काम के लिए टाइम स्लॉट था। 3 बजे से पहले रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट, 3:30 बजे बोर्ड कॉल और शाम को मीटिंग लॉबी में। शरीर में थकावट थी, लेकिन मन नहीं मान रहा था कि रुकना चाहिए। उसने ऑफिस फोल्डर से एक फाइल निकाली, पीले स्टिकी नोट से भरी हुई। एक एक करके वो नोट्स हटाता गया और हर सेक्शन के सामने टिक लगाता रहा। कभी वो एक ग्राफ एडजस्ट करता, कभी किसी स्टेटमेंट को रिफ्रेस करता। आंखें स्क्रीन से नहीं हटती, ना ही चेहरे पर कोई भाव उभरते। ये अखिल वही था जो भावनाओं से ऊपर उठकर सिस्टम के भीतर खुद को फिट करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी स्क्रीन के कोने में शालिनी का नाम फिर से उभरता, मिस्ड कॉल, शालिनी, लेकिन उसने अनदेखा करना सीख लिया था। फोन एक किनारे पड़ा था, जैसे वो जानबूझकर दूरी बनाए हुए हो। ना उसने मैसेज पढ़ा, ना कॉल बैक किया। उसने एक बार फिर लैपटॉप पर मेल खोली। टू लीगल टीम, सब्जेक्ट फाइनल नोट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। अटैच्ड आर द पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स फॉर वेंडर नंबर 29B। पॉइंट्स मार्क्ड इन येलो रिक्वायर लीगल रिवर्डिंग। प्लीज इंश्योर दैट द क्लॉजेस अंडर IP प्रोटेक्शन आर सॉलिड बिफोर एक्सटर्नल डिस्कशन। एक और मेल गया।
ऑफिस की घड़ी ने 3 बजाए। अखिल ने बिना देखे स्क्रीन पर लॉग इन किया, वीडियो कॉल लिंक पर क्लिक किया और ईयरबड्स लगा लिए। केबिन की हवा अब ठंडी नहीं बल्कि बोझिल लग रही थी, लेकिन अखिल की सांसों में कोई अड़चन नहीं थी। ना वो रुका, न थमा, बस आगे बढ़ता गया, जैसे कोई मशीन जिसे रुकना आता ही नहीं। बैठते हुए उसकी नज़र मेज पर रखी एक नोटबुक पर पड़ी। उसे खोला और उसमें लिखा, टू डू लिस्ट, ऑडिट ड्राफ्ट फाइनल, क्रॉस चेक फंड मूवमेंट, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल नोट्स, शालिनी। उसने आखिरी लाइन पर पहुंचते ही पेन से उसे काट दिया। कोई टिप्पणी नहीं, कोई सोच नहीं, बस एक लाइन और फिर उसका अंत। अंत का स्पर्श। दिन ढलने को आया, केबिन में अब हल्की छाया थी। उसने लैपटॉप बंद किया और एक पल के लिए सिर टेबल पर रख दिया। कोई सोच नहीं, कोई याद नहीं, बस थकावट। और फिर उसने धीरे से आंखें खोली और वापस लैपटॉप ऑन कर दिया। एक मेल और बचा है। उसके होंठ बुदबुदाए।